शुरुआत करते हैं पूरे उत्साह के साथ इस खास डीप डाइव में, सबका स्वागत करते हैं।
हाँ, हेलो सभी को। आज का डिस्कशन सच में बहुत मजेदार होने वाला है।
एकदम। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की किताब का चैप्टर 7, जिसका टाइटल है इंडियाज कल्चरल रूट्स। हमारे पास इसको समझने के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग सोर्सेज हैं।
और हमारा मिशन भी बहुत क्लियर है आज।
बिल्कुल, हमारा मिशन है इस चैप्टर को बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और फनी तरीके से समझना, जिससे बच्चों को भी मजा आए। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों के लिए।
हाँ, एक विजुअल एनालॉजी बहुत अच्छी रहेगी।
इमेजिन कीजिए एक बहुत पुराना और विशाल बैनियन ट्री, यानी एक बड़ा सा बरगद का पेड़। आपने देखा होगा कि उसकी बहुत सारी रूट्स होती हैं, एक मजबूत ट्रंक होता है और कई सारी ब्रांचेस होती हैं।
हाँ।
और वो ब्रांचेस वापस जमीन में जाकर नई रूट्स बन जाती हैं। सही कहा, इंडिया का कल्चर भी बिल्कुल इस बनियन ट्री जैसा ही है। अलग अलग रूट्स और ब्रांचेस मिलकर एक इतना बड़ा पेड़ बनाते हैं जिसको एक वर्ड में समेटना मुश्किल है।
तो आज हम इसी पेड़ की जड़ों के बारे में जानेंगे, यानी हमारी कल्चरल रूट्स। आराम से और एकदम काम तरीके से इसे समझेंगे।
ओके, तो यहाँ हमारा पहला रिमेम्बर दिस नोट आता है। इंडिया का कल्चर एक पुराने बनियन ट्री की तरह है, जिसकी कई रूट्स और ब्रांचेस एक साथ जुड़ी हुई हैं।
एकदम परफेक्ट समरी। तो चलिए अब इस टॉपिक के अंदर चलते हैं।
ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले समझते हैं कि वेदास क्या हैं। ये जो वर्ड है वेदा, ये संस्कृत के वर्ड विद से आया है।
और इस विद का सीधा सा मतलब होता है नॉलेज, यानी ज्ञान। ये एंशिएंट नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स है।
तो टोटल कितने वेदास होते हैं?
टोटल 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। ये हमारी हिस्ट्री के सबसे एंशिएंट टेक्स्ट माने जाते हैं।
पता है, इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है, हजारों साल पहले ये वेदास लिखे नहीं गए थे।
वही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इनको ओरली पास किया गया था, यानी गाकर और सुनकर याद रखा जाता था। इन्हें लगभग 5th से 2nd मिलेनियम BCE के बीच सप्त सिंधवार रीजन में कंपोज किया गया।
इसका कॉज और इफेक्ट समझते हैं बच्चों। कॉज ये था कि इनको बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग के साथ ओरली याद किया गया,
और इसका इफेक्ट ये हुआ कि बिना किसी बुक या स्क्रिप्ट के, बिना किसी गलती के, ये हजारों सालों तक एकदम सेफ रहे। इसी एक्यूरेसी की वजह से 2008 में यूनेस्को ने वैदिक चैंटिंग को एक मास्टरपीस माना।
अरे वाह, इन हिम्स को ऋषिज ने, यानी मेल सेजेस, और ऋषिकाज ने, यानी फीमेल सेजेस ने मिलकर कंपोज किया था। ये इंद्रा, अग्नि, वरुणा और उषा जैसी डेटीज के लिए प्रेयर्स है।
पर ये सिर्फ प्रेयर्स नहीं है, ये डेटीज मिलकर रिथम को मेंटेन करती हैं। रिथम का सिंपल मतलब होता है ट्रूथ और ऑर्डर, एक ऐसा बैलेंस जो दुनिया को चलाता है।
अच्छा, ट्रूथ से याद आया, एक बहुत फेमस कोट है ना इसके बारे में।
हाँ, वो कोट है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका मतलब है कि ट्रूथ एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नाम देते हैं।
ये तो बहुत ओपन माइंडेड अप्रोच है। तो यहाँ एक और रिमेम्बर दिस आता है। टोटल 4 वेदास हैं, ऋग, यजुर, समा और अथर्वा। इन्हें ओरली पास किया गया, और रितम का मतलब है ट्रूथ और ऑर्डर।
व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसे काम करती थी। ये किसी बड़े किंगडम जैसी नहीं थी, सोसाइटी अलग अलग जनाज में बटी हुई थी।
जनाज यानी क्लैंस या छोटे ग्रुप्स।
बिल्कुल, जैसे भारताज, पुरुज और कुरुस। और उस टाइम सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस होते थे। और सबसे अच्छी बात उनकी पॉलिटिक्स थी, कोई एक सिंगल राजा सब कुछ अकेले डिसाइड नहीं करता था।
तो डिसीजंस कैसे लेते थे वो लोग?
उनके पास सभा और समिति नाम की असेंबलीज होती थी, वहां सब लोग मिलकर डिसीजंस लेते थे। ये एक टीम वर्क जैसा था।
ये सच में बहुत एडवांस लगता है। फिर वक्त के साथ नए आइडियाज भी आए होंगे सोसाइटी में।
हाँ, वहीं से उपनिषद आए। उपनिषद ने रीबर्थ यानी पुनर्जन्म और कर्मा के कॉन्सेप्ट दिए।
मतलब हम जो एक्शंस करेंगे उसका रिजल्ट हमें ही मिलेगा।
हाँ, फिर वेदांता स्कूल ऑफ थॉट आया, जिसने ब्रह्मन और आत्मा के बारे में बताया।
सही कहा, ब्रह्मन वो डिवाइन एसेंस है जो पूरे यूनिवर्स में भरा हुआ है।
और हमारे अंदर जो अपनी खुद की लाइफ है, जो सेल्फ है, उसे आत्मन कहते हैं। दोनों असल में एक ही हैं।
इसे बच्चों को समझाने के लिए मैं एक छोटी कहानी सुनाती हूँ। एक महान सेज थे उदाला का। उन्होंने अपने बेटे श्वेता केतु को बैनियन फ्रूट का एक छोटा सा बीज दिखाया।
फिर जब उस बीज को खोला गया तो अंदर से वो एकदम खाली लगा।
राइट, पर उदालाका ने समझाया कि इसी खाली बीज के अंदर एक इतना बड़ा बरगद का पेड़ छुपा होता है। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, जैसे मिट्टी से कई अलग अलग शेप्स के पॉट्स बन सकते हैं, लेकिन असल में सब मिट्टी ही होते हैं।
ठीक वैसे इस दुनिया में सब कुछ उस एक ब्रह्मांड से बना है। बहुत प्यारी स्टोरी है। ऐसे ही एक छोटा बच्चा था नचिकेता, उसने यमा यानी गॉड ऑफ डेथ से लाइफ के बारे में बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे थे।
बच्चों की क्यूरियोसिटी कमाल की होती है। एक तीसरी स्टोरी भी है गार्गी की। किंग जनका के कोर्ट में गार्गी नाम की एक ऋषिका ने याज्ञवल्क्या नाम के महान सेज से बहुत मुश्किल क्वेश्चंस पूछे थे,
जो दिखाता है कि उस सोसाइटी में क्वेश्चंस पूछने की पूरी आजादी थी, चाहे आप औरत हो या आदमी।
तो बच्चों रिमेम्बर दिस, सोसाइटी जनास में बनती थी। उपनिषद ने कर्मा, ब्राह्मण यानी डिवाइन एसेंस और आत्मन के कॉन्सेप्ट्स दिए।
अब इस इंटेलेक्चुअल टाइम के बाद सोसाइटी में एक नया बड़ा शिफ्ट आता है।
हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं बुद्धिज्म की। लुम्बिनी में एक प्रिंस का जन्म हुआ जिनका नाम सिद्धार्था गौतमा था।
उनकी अर्ली लाइफ बहुत लग्जूरियस और प्रोटेक्टेड थी, पर 29 साल की उम्र में एक दिन वो अपने घर से बाहर निकले। वहां उन्होंने चार ऐसी चीजें देखी जिन्होंने सब कुछ बदल दिया।
हाँ, यही वो कॉज था। उन्होंने एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन और एक डेड बॉडी देखी। साथ ही उन्होंने एक खुश साधु भी देखा।
इसका इफेक्ट ये हुआ कि उन्हें ह्यूमन सफरिंग यानी दुख की असलियत समझ आई। इस सफरिंग का कारण जानने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया।
बहुत सालों बाद बिहार के बोधगया में एक पीपल ट्री के नीचे मेडिटेट करते हुए उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। फिर वो बुद्धा बन गए, यानी दि अवेकन्ड वन।
बुद्धा ने बहुत सिंपल बातें सिखाई। उन्होंने बताया कि हमारे दुख का मेन कारण है अविद्या यानी इग्नोरेंस, और दूसरा कारण है अटैचमेंट,
मतलब चीजों से ज्यादा लगाव रखना।
उन्होंने सबको अहिंसा का रास्ता सिखाया, जिसका मतलब है किसी को चोट न पहुंचाना।
उनकी टीचिंग्स को स्टोरीज के थ्रू सिखाया जाता था, जिन्हें जातका टेल्स कहते हैं।
तो बच्चों के लिए एक प्यारी सी मंकी किंग स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार बुद्धा अपने एक पिछले जन्म में मंकी किंग थे। एक दिन उनके ट्रूप को सोल्जर्स ने एक पेड़ पर घेर लिया।
तो उन मंकीज को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, मंकी किंग ने अपनी बॉडी को खींचकर एक नदी के ऊपर ब्रिज बना दिया ताकि सारे मंकीज सेफली क्रॉस कर सकें। उन्होंने सबको बचा लिया, पर इसमें उनकी जान चली गई। ये सेल्फलेस सैक्रिफाइस की एक बहुत महान स्टोरी है।
ऐसे ही लीडर सोसाइटी को असल मायने में गाइड करते हैं।
बिल्कुल। तो बच्चों रिमेम्बर दिस, प्रिंस सिद्धार्था गौतमा ही बुद्धा बने। उन्होंने अहिंसा सिखाया और बताया कि सफरिंग का कारण अटैचमेंट है।
इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ठीक उसी टाइमलाइन में एक और स्कूल ऑफ थॉट बहुत फेमस हुआ, जिसे जैनिज्म कहते हैं।
हाँ, बिहार के वैशाली के पास प्रिंस वर्धमाना का जन्म हुआ था। उन्होंने भी 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था ना।
हाँ, और उन्होंने 12 साल तक बहुत कड़ी तपस्या की, फिर उन्हें इन्फिनिट नॉलेज मिला और वो महावीर कहलाए, यानी ग्रेट हीरो।
ये जैना वर्ड जिना से आया है, और जिना का मतलब होता है कॉन्करर यानी विजेता।
लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये किसी दूसरे राजा को हराने वाले विजेता नहीं थे। जीना वो है जिसने अपनी खुद की इग्नोरेंस और अटैचमेंट्स को हरा दिया हो।
वाओ, ये ट्रू विक्ट्री है। महावीरा ने तीन मेन बातें सिखाई। पहला था अहिंसा, यानी किसी भी लिविंग क्रिएचर को बिल्कुल दुख ना देना।
दूसरा था अनेकांतवादा, जिसका मतलब है मिनी पर्सपेक्टिव्स। इसको ऐसे समझें जैसे एक खिलौने को अलग अलग एंगल से देखना। हर किसी का व्यू थोड़ा अलग हो सकता है, पर वो अपनी जगह सही हो सकते हैं।
ये आज की लाइफ में बहुत काम की बात है। और तीसरा पॉइंट था अपरिग्रह। इसका मीनिंग है नॉन पोजेशन, यानी सिर्फ वही चीजें अपने पास रखना जो सच में जरूरी हो, फालतू सामान इकट्ठा ना करना।
इस वैल्यू को समझाने के लिए एक बड़ी मजेदार कहानी है, रोइनिया की स्टोरी।
मैं सुनाती हूँ ये स्टोरी। रोइनिया एक बहुत चालाक बर्गलर था, मतलब एक चोर। एक बार उसने गलती से महावीरा का समन सुन लिया था।
और फिर जब उसे पुलिस पकड़ लेती है तब क्या होता है?
जब उसे पकड़ा जाता है तो वो सरमन की बातों को याद करके एक ट्रिक लगाता है और जेल से बच निकलता है। लेकिन उसे फिर अचानक अपनी गलती का एहसास होता है, उसे रिमोर्स फील होता है,
जिसके बाद वो चोरी का सारा सामान वापस कर देता है और फॉरगिवनेस मांगता है, एक नई और अच्छी लाइफ शुरू करता है,
जिससे हमें सीख मिलती है कि हर किसी को सेकेंड चांस मिलना चाहिए। तो रिमेम्बर दिस, महावीरा ने अहिंसा, अनेकांतवादा यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, और अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन सिखाया।
अब तक हमने जितनी बातें की वो सब क्लासिकल स्कूल्स ऑफ थॉट थे, पर इस बनियाक ट्री की कुछ और भी रूट्स हैं।
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब के अलावा इंडिया में बहुत सारी ओरल ट्रेडिशंस और जनजातियां भी रही हैं, जिन्होंने इस कल्चर को डीपली शेप किया है।
बिल्कुल, इन ट्राइब्स और फोक ट्रेडिशंस का हिंदुइज्म के साथ बहुत इंटरेक्शन रहा है। ये दोनों एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज करते रहे हैं।
जैसे वो पुरी के भगवान जगन्नाथ वाली बात, वो असल में एक ट्राइबल डीएटी थे ना?
हाँ, ओडिशा में पूजे जाने वाले जगन्नाथ भगवान ओरिजिनली एक ट्राइबल डीएटी ही थे, बाद में वो मेनस्ट्रीम ट्रेडिशन का बड़ा हिस्सा बन गए।
और नॉर्थ ईस्ट से लेकर तमिलनाडु तक की जो ट्राइब्स हैं, उनके पास रामायण और महाभारत की अपनी अलग स्टोरीज है। उन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से उन्हें बदल दिया है।
एक और सबसे खूबसूरत बात जो हम इन ट्राइब से सीख सकते हैं वो है नेचर वर्शिप।
नेचर वर्शिप यानी पेड़, पहाड़ और नदियों को भगवान मानना।
हाँ, वो नेचर को सेक्रेड यानी बेहद पवित्र मानते हैं। इसका एक अमेजिंग एग्जाम्पल तमिलनाडु के नीलगिरीज में तोडा ट्राइब्स का है।
तोडा ट्राइब्स, उनकी क्या खासियत है?
वो ट्राइबल्स अपने आसपास की 30 माउंटेन पीक्स को भगवान मानते हैं। वो उन पहाड़ों की तरफ अपनी उंगली भी नहीं उठाते क्योंकि वो उनके लिए इतने सेक्रेड हैं।
रिस्पेक्ट का ये लेवल हम सबको सीखना चाहिए नेचर के लिए।
तो हमारा आखिरी रिमेम्बर दिस, ट्राइब्स और फोक ट्रेडिशंस ने भी इंडिया के कल्चर को शेप किया है। वो नेचर को बहुत सेक्रेड मानते हैं।
ये डिस्कशन सच में बहुत आगे तक फैला हुआ था।
चलिए अब थोड़ा समराइज करते हैं, आज हमने क्या क्या जाना।
वैदिक सोसाइटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ट्राइबल रूट्स, ये सब उसी एक बड़े बैनियन ट्री की अलग अलग ब्रांचेस और रूट्स हैं।
एकदम सही, पर किसी लिसनर को लग सकता है कि ये जानना क्यों जरूरी है, ये सब तो बहुत एंशियंट बातें हैं।
क्योंकि इन रूट्स को समझकर ही हम इंडिया दैट इज भारत को सच में समझ सकते हैं। आज की एवरीडे लाइफ में अहिंसा, नेचर के रिस्पेक्ट करना और सच को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखना, ये सब बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, और मैं इस डिस्कशन को एंड करने के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहता हूँ। एंशियंट ट्रेडिशंस और ट्राइब्स हमेशा मानती आई हैं कि पेड़ों, पहाड़ों और नदियों में लाइफ और कॉन्शियसनेस होती है, वो फील कर सकते हैं,
जिसे साइंस ने लंबे समय तक मिथोलॉजी माना।
पर अब वही मॉडर्न साइंस प्लांट कम्युनिकेशन पर रिसर्च कर रही है। साइंटिफिक एविडेंस आ रहे हैं कि प्लांट्स भी केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बात करते हैं।
वाओ, तो क्या सच में नेचर की अपनी एक डीपली छिपी हुई कॉन्शियसनेस है जिसे हम आज की इंडस्ट्रियल मॉडर्न दुनिया में पूरी तरह भूल गए हैं?
यही तो सवाल है, इस बारे में सब जरूर सोचिएगा।
तो आज का ये मजेदार डीप डाइव यहीं एंड करते हैं। बनियन ट्री की इन रूट्स के बारे में सोचते रहिए, नेचर से जुड़िए और नई चीजें डिस्कवर करते रहिए। हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया और अलविदा।